वो करता है, सबको तारता है। इसी तरह एक साधु को सीखना चाहिए कि हमें भी जल जैसा स्वभाव लेकर के और दूसरों को तारना है। किस कैसे तारेंगे? जल में तो स्वाभाविक गुण है तारने का, साफ करने का, लेकिन किसी साधु में वो गुण होता है इच्छा, उपस्पर्श और कीर्तन। इच्छा माने दर्शन, साधु के दर्शन से पाप कट जाता है। इच्छा माने इच्छा दर्शन, और उपस्पर्श चरण का स्पर्श, पाद संवाहन आदि, और कीर्तन है जब साधु बोलता है तो उसके बोली से अघम पुनाति, वह जल का मित्र है, अपान मित्रम, जल मित्र साधु, मतलब जल जैसा स्वभाव वाला साधु जगत को पवित्र कर देता है। जैसे जल सबको पवित्र करता है, उसी तरह से साधु को चाहिए कि जल जैसा स्वभाव लेकर के सबको सुखी कर दे, पवित्र कर दे। भगवान का नाम बोल करके, गुण बोल करके वो जगत को पवित्र करता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, निर्विवाद है कि जल वास्तव में महासाधु है। जल से रोज नहाते हैं ना, जल का गुण सीखना चाहिए। इसको अपान मित्रम कहते हैं। अपान मित्रम भूत्वा मुनि जगत पुनाति, जगत इति शेषः, जगत को तार देता है। तो जल में क्या क्या गुण हुए? स्वच्छ और स्वभाव से ही स्निग्ध, माधुर्य, नृणाम तीर्थ भू, इस प्रकार इच्छो पस्पर्श कीर्तन ही पुनाति। अब तक ऐसे गुरुओं का नाम आया जो हमारे शरीर में भी विद्यमान है, पंच महाभूत, जिनके आवरण में है, जिनका साथ कभी नहीं छूट सकता, ऐसे पांच गुरुओं से उपदेश हुआ, मतलब उनसे शिक्षा हुई। कौन कौन व्यक्ति हैं इसमें जिनके मन में बहुत बड़ा उत्साह हुआ कि हम जल जैसा बनेंगे? जरा हाथ उठाए, किनके मन में इच्छा हो गई? सबको इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए। नहीं, इसके साथ बहुत बहुत बातें हैं। जल है, सबको साफ करता है, अतः आप लोगों को भी चाहिए कि गली घर द्वार दूसरे का कपड़ा साफ कर दे। नहीं, हमारा तो साफ है ही, हम वास्तव में कम से कम स्वयं गंदा न करे। थूकना हो जाकर जगह से थूके, दतवन फाड़ कर फेंकना हो जगह से फेंके, ये नहीं कहीं गंदा करे। तो जल क्या है? जल तो दूसरों को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जल जैसा साधु जहां जाएगा लोगों को पवित्र करेगा, दर्शन दे करके, स्पर्श दे करके और बोली द्वारा, कीर्तन द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक साधु अगर कहीं घूमता है, उसको देख करके बच्चे या कोई भी बोलते हैं हरे कृष्ण, तो इसका मतलब वो शुद्ध करता हुआ जा रहा है। इस तरह से शुद्ध होता है वातावरण, खास करके भगवान के कीर्ति के वर्णन द्वारा, नाम उच्चारण द्वारा जीव शुद्ध होता है। तो इस तरह साधु को चाहिए कि वह जल का मित्र बने, अपान मित्रम। इसका अर्थ जल तुल्य भूत्वा या उदक तुल्य या उदक गुण ग्राही सन, जल के उदक के गुण को ग्रहण करें, अपान मित्रम। जैसे वहां नग शिष्य था, ऐसे यहाँ अपान मित्रम है, जलों का मित्र बन करके। इसका मतलब सरोवर का जल, चंपाकल का जल, कुआं का जल, कई प्रकार के जल हैं, और जल का प्रयोग अनेक प्रकार से लोग करते हैं, जैसे पीने के लिए, कोला करने के लिए, स्नान करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, गाड़ी आदि धोने के लिए, चलाने के लिए, कई तरह से जल का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ही साथ जल जो है वो जीवन भूत है प्राणियों का, तो इस प्रकार जल का मित्र बनना चाहिए। नभ का मित्र तो नहीं बन पाएंगे, तो इतना बड़ा है और संग निर्लिप्त है, इतना होना कठिन है। वो तो भगवान के गुणों का स्मरण होता है, लेकिन जल के गुणों को देख करके उसको अपनाना चाहिए। यहाँ अपाम मित्रम से यह सिद्ध किया गया। तो जल मित्र बनकर जगत को पवित्र करना चाहिए। हाँ हाँ, मित्र से फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग में है मित्र। जैसे आकाशम, आकाश नहीं होता है सुमित्रम। तो जल जैसा स्वभाव धारण करके मुनि जो है जगत को पवित्र कर देता है, स्वभाव से ही स्नेह करता है दूसरे के प्रति, बहुत मधुर बोलता। अथवा प्रकृतितः सब जगह लगेगा, प्रकृतितः स्वच्छ, प्रकृतितः स्निग्ध, प्रकृतितः माधुर्य, प्रकृतितः तीर्थभू, सब जगह लगा सकते हैं। लेकिन स्निग्ध के पहले लगाए हैं सिद्धर स्वामी, स्वाभाविक ही स्नेहवान। इस तरह जल के गुण को ग्रहण करना चाहिए। हमने जल से सीखा है, हम लोगों का जब से जन्म हुआ है तब से पानी से काम ले रहे हैं, लेकिन कभी सीखे? सुन करके सीखने की इच्छा होती है कि हम भी जल जैसा बने। और अब जल से विरुद्ध ठीक आग द्वारा सीखिए, ये पंच महाभूत में से एक यही भूत है। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दर्भाजनः सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। अग्नेः शिक्षितम् आह, अग्नि से भगवान दत्तात्रेय क्या सीखे हैं इसको बता रहे। तेजस्वी इति, तेजस्वी आगे तेज से युक्त होती है। हम अग्नि कह रहे हैं, पुल्लिंग में बोले अग्नि तेज से युक्त रहता है। इसी तरह से मुनि तेजस्वी होता है, युक्तात्मा जो है वो तेजस्वी रहता है। तेजस्वी ज्ञाना किससे आप तेजस्वी, यहाँ तेज का अर्थ है प्रदीप्त कॉन्शसनेस, कृष्ण भावना अमृत। वह कृष्ण के प्रति भक्ति में ज्ञान से तेजस्वी होता है। जिसके पास वास्तव में ज्ञान है वह बहुत तेजस्वी व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह किसी काम का व्यक्ति नहीं। तो भगवत अनुभव जिसके पास है उसको तेजस्वी कहेंगे। एक तो ज्ञान है भगवान कृष्ण का, और दूसरे तपस्या है, तपसा दीप्त, तप करके मतलब इंद्रियों को विषयों से रोक करके और भी दीप्त रहता है। भगवत भक्ति से ज्ञान से तेज बढ़ता है साधु का, और तपस्या से भी उसको दीप्त होता है। भोग भोगने से साधु मलिन हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एकादशी का उपवास करने के बाद कुछ तेज बढ़ता है, मन में उत्साह आता है, और द्वादशी के दिन पारण करने में कुछ सुख अनुभव होता है, व्रत पूरा किए। और जो व्यक्ति एकादशी नहीं करता है, खास करके साधु होकर भी नहीं करता है, तो बड़ा धूमिल रहता है। वो तो पहले छिप कर रहता है, कोई दूसरा साधु जान न जाए कि ये एकादशी नहीं किया है। भींगी बिल्ली बना रहता है, बिल्ली भींग जाने पर बेचारी हो जाती है क्या? भींगी बिल्ली को कभी पानी में भेंक कर देखना चाहिए। तो अग्नि में सहज तेज होता है। वास्तव में ज्ञान की उपमा आग से बारंबार दी गई है। ज्ञानाग्नि भस्म कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। भगवान ने भी गीता में ज्ञान की उपमा बारंबार अग्नि से दिया है। इसके पहले भी कथा आ रही थी तो कई बार की बात आई। तो साधु को शास्त्रों के ज्ञान से और भगवत भक्ति से युक्त होना चाहिए, तो वह तेजस्वी होता है। और ऊपर से भोगों का त्याग, इसको तप कहते हैं। बस बिहारी खुराक कीजिए। लाइन में वही दोनों आदमी सते थे। तेजस्वी तपसा दीप्त और दुर्धर्ष, अग्नि दुर्धर्ष होता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, जो पकड़ने जाएगा वो भी जलने लगेगा, है ना? ऐसे देखे है ना, आप आग जल रही है और उसको खर से ढाकिए तो खर भी जल जाएगा, इसको तेज दुर्धर्ष कहते हैं। मतलब है एक दृढ़ नियम परायण शुद्ध साधु के मन में क्षोभ पैदा कर सकना अशक्य, क्षोभ ही तुम अशक्य। कोई विषय दिखा करके, विषय भोग का वातावरण प्रस्तुत करके कोई चाहे कि एक शुद्ध साधु को दिगा दे तो ऐसे नहीं हो सकता, इसको दुर्धर्ष कहते। उसके भीतर विषय के प्रति लालसा पैदा कर देना असंभव, दुर्धर्ष कहते। और उदर भाजन विरक्त महा परमहंस मुनि के लिए कह रहे हैं, उसके पास अन्न आदि रखने के लिए पात्र क्या है? तो बस उदर, उदर भाजन बस, और कोई बर्तन है, अटैची नहीं, कुछ नहीं, लोटा गिलास कुछ नहीं। अग्नि के अर्थ में तो आप जानते हैं ना, अग्नि संग्रह नहीं करता है, पेट में जितना आ जाए उतना ही खा लेता है, बस जितना आप दीजिए उतना ही खाकर संतुष्ट रहता है। अगर पूरा विश्व दे दिया जाए तो अग्नि देवता वो भी खा जाएंगे, लेकिन जितना देते हैं उतना से ही शांत हो जाता है, खा करके और शांत हो जाता है, जितना दिए उतना है। और सर्वभक्षक, सब कुछ खाया जाता है, गाय का गोइठा दीजिए गोबर सुखा कर वो भी खा जाएंगे, सुअर का गोइठा बनाकर दीजिए सुअर के मल का तो अग्नि दे वो भी खा जाएगा, फिर भी उनके तप उनके तेज में कोई अंतर नहीं होता। भानु कृष्ण सर्व रस खाए तिनकह मंद कहत कौनाय, सूर्य और अग्नि सब रस सुखाते हैं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका तेज वैसा ही है। इसी तरह से एक विरक्त परमहंस मुनि वो सब कुछ खा सकता है, लेकिन फिर भी उसका तेज फीका नहीं हो सकता। सब कुछ का मतलब यहाँ, लेकिन जो भी प्रसाद दिया अपन खा ये, और ऐसा नहीं कि कोई प्याज लहसुन दे दिया वो भी सब भक्ष्य खा लिया, या मांस मदिरा दे दिया वो भी खा पी लिया, नहीं ये अर्थ नहीं है। विष्णु का प्रसाद वह खाता है, लेकिन प्रसाद अब रूखा है सूखा है थोड़ा है ज्यादा है या भार मान करके दे रहा है कि प्रेम से दे रहा है, ये विचार साधु को नहीं करना चाहिए। भार मान करके दे तब भी अपन खा करके उधर राम राम करता हुआ चल दे तो वह फिर उस अन्न दोष से प्रभावित नहीं होता। जैसे अग्निदेव कुछ भी खा ले तो अग्निदेव कोई बर्फ थोड़े हो जाते हैं, तेज वैसा ही रहता है उनमें। इसी तरह से कभी कभी विरक्त साधुओं को ऐसा पाला पड़ सकता है, कोई अन्न बहुत खराब हो, गलत ढंग से अर्जित किया गया है, कोई चोरी करके लाया है, किसी को सता करके लाया है, और साधु गया उसके दरवाजे पर भिक्षा दे ही, वो मान लीजिए भोग लगा है प्रसाद लगा है बना है तो उसको खा सकता है, लेकिन अगर चोरी का धन होगा तो उस साधु के तप और तेज को फीका नहीं कर सकता है। मलम न आदत्ते, मलम मतलब पाप, आदत्ते माने नहीं ग्रहण कर पाता है। जैसे अग्निदेव कुछ भी जला देते हैं लेकिन फिर भी तेज उतना ही रहता है। गाय का गोइठा जलाइए चंदन की लकड़ी जलाइए जितनी आंच आज में निकलेगी, सुअर के गुह को जलाएंगे उसमें भी उतनी ही आंच निकलेगी। इस तरह अग्नि का स्वभाव है, तो विविध प्रकार का अन्न मिलेगा, विविध प्रकार का भोजन मिलेगा दुनिया में, कोई ये कहीं चूल्हा पर तो साधु रहता नहीं है। विरक्तों की बात कही जा रही है, उनको तो घूमना ही लिखा रहता है, घूमो ये करो वो करो, लेकिन अब कोई इस तरह का की टीका करे, कटाक्ष करे, अरे ये सर्व भक्षी है, जहाँ तहाँ खाता रहता है। तो जहाँ तहाँ खा करके भी वह साधु वहाँ के दोषों से लिप्त नहीं होता है, जैसे अग्नि सब कुछ खाते हैं परंतु तेज बना रहता है, फीका नहीं होते। इस अग्नि से शिक्षा मिलती है। तो जुक्तात्मा जोगी भी एवं भवेत इत्यर्थ, जोगी को भी ऐसा ही होना चाहिए। ऊपर वाली सारी शिक्षा ग्रहण करके तब नीचे वाली लेनी चाहिए सर्वभक्ष। ये नहीं पहले नीचे से चालू कर दे सारा खाने लगे और न तप न ज्ञान न कुछ और संग्रह भरा पड़ा है। यह उस साधु के लिए बात कही जा रही है जिसके पास सामान रखने के लिए केवल उदर भर है, वह उदर भाजना और दूसरा बर्तन है ही नहीं। मतलब जिसको बस पेट भर गया, भिक्षा में शरीर चलाने के लिए अन्न जरूरी है, कोई साधु हो महात्मा हो कुछ भी हो, भोजन तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसके पास कितना बर्तन होना चाहिए, उदर, उदरम भाजनम अन्नादि निधान पात्रम जस्य स। अब किसी साधु को कोठिला नहीं रखना चाहिए, कोठिला में कुछ अन्न पड़ा है या एटैची में रुपया इतना पड़ा हुआ है, इतना ये है, उसके पास एक ही बर्तन होना चाहिए, वो क्या, पेट। पेट में खा लिया, इसके बाद बस चल दिया, घूम रहा है। वास्तव में इस तरह से कोई हो तो वह सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति। यह नहीं कि चला तो इधर एटैची लटका लिया, उधर बैग लटका लिया, उधर ये, और स्टेशन पर जाकर कुली 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 करने लगा, ढो ये करो वो करो। पहले के सुखदेव गोस्वामी आदि कुली खोजते थे, कहीं चलते समय कोई साधु, शंकराचार्य भी कुली नहीं किए होंगे, जो कि ग्रंथ लिखते चलते थे। इस तरह से लोगों ने तप करके बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। उदर भाजना अग्नि पक्ष में तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि अग्निदेव को कुछ खाने को दीजिए तो बस खा लेंगे और बाकी सामान लेकर जाएंगे नहीं। ये नहीं कि और बोझा और लकड़ी, बोझा के बोझा लकड़ी सब बांध करके चली, हम दूसरे दिन खाएंगे। अग्निदेव ऐसा नहीं करते, जितना मिला उतना खा करके बस चलते। चल दिए अग्निदेव तो चलते नहीं है, शांत हो जाते हैं, लेकिन यह शांत होने के अर्थ में है चल, बड़ी फुलौरा बेसन के रास्ता धर स्टेशन साधु लोगों के लिए कहते हैं। चल ऐसे ही साधुओं से वास्तव में पब्लिक स्नेह करती है, जनता स्नेह करती है, और जनता देख लेती है कि ये भोगी साधु है, ये तो हमसे भी ज्यादा भोग रखा है तो उसके प्रति लोग बहुत घृणा करते हैं मन में। भले बाहर से प्रणाम कर दे, चाहे कुछ दे दे मधुकरी या दे कुछ, लेकिन भीतर से बहुत घृणा करते हैं। और जो उदर भाजन होगा उसके, उसको तो लोग अपने प्राण के समान मानते हैं, कहीं भी जाने नहीं, इसके पास कोई संग्रह नहीं है, केवल भूख लगी है तो आया है रोटी मांगने बस, और वही खाया और उसके बाद बस चल। कमंडल भाजना नहीं, ये थाली भाजन नहीं, कर भाजन भले हो सकते, कर पात्री। सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श परमहंस हैं, वो तो कॉपी भी नहीं पहनते थे, कपड़ा का संग्रह। जैसे कहीं मांगने गए तो हाथ पर जो कुछ भी मिला, चाहे सब्जी चाहे भात चाहे रोटी, और बस किसी तरह से खा लिया हाथ नहीं रख करके, इसको करपात्री कहते हैं। पात्र माने बर्तन, कर माने हाथ, इसको करपात्री कहते हैं। आजकल के तो कई करपात्री हैं, उनके घर में देखिए तो एक एक आदमी को 20-20 कटोरियां रखी हुई, कई बाल्टी रखी है, बर्तन रखा है, और नाम है करपात्री। भगवान ने सबको स्वाभाविक एक बर्तन दिया है, दोनों हाथ को जोड़िए तो एक कटोरा बन जाएगा, ये बर्तन है ना स्वाभाविक। तो जो विरक्त परमहंस हो जाते हैं वे लोग बस इसी से काम चला लेते हैं और बर्तन नहीं रखते। अच्छा, साधु के लिए अभी मना किया जा रहा है कि हाथ को भी बर्तन न बनाए, खा करके पेट में कर ले और हाथ में लेकर के न चले। फिर काली हम माला जप करे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अग्नि कभी भी संग्रह नहीं करता है, खाया खाया चल। लेकिन पहले तेजस्वी तपसा दीप्त दुर्धर्ष तब उदर भाजना तब अंत में सर्वभक्ष। सर्वभक्ष पर लिखते हैं, सर्वभक्ष का अर्थ इतना ही है कि मिष्ट कदन मीठा अच्छायन इस प्रकार के विभागम अनवेक्ष। ये चिंता न करे कि स्वादिष्ट भोजन मिला है या कदन है, इसकी चिंता न करे। इसका अर्थ ये नहीं कि नतु निषिद्धा निषिद्ध भक्षक, गर्हित निंदित अन्न कभी न खाए, यह अर्थ है। खाने लायक पदार्थ खाए, भगवान का प्रसाद खाए, लेकिन उसमें ये न देखे कि मीठा है और खराब है, रूखा है सूखा है, अपमान से दिया गया है अपमान से दिया गया है। कभी कभी हमने देखा है गृहस्थों के यहाँ तो कम, लेकिन साधुओं के आश्रम में इतना अपमान से खाने को मिलता है। चल वहां बैठ, वो ऐसे करते हैं साधु लोग, गृहस्थ लोग बेचारे नहीं करते, वो डरते हैं साधुओं से। चल वहां बैठ, उसको पता हो तो ओ बेचारा क्या करे, खा लेता है। तो एक परमहंस साधु को इस तरह का होना चाहिए, चाहे कुत्ते की तरह डांट करके खाना दे, चाहे माला पहना करके 10-20 रुपया दक्षिणा देकर खिलावे, खा ले उसको तो उधर भाजन से मतलब है, पेट भर गया जाकर कहीं राम राम करेगा हो। इस तरह से उसे होना चाहिए। और दुर्धर्ष किसी भी विषय से के श्रवण से देखने से या रस आदि से भी, कुछ खाया तो ऐसा न क्षोभ हो जाए कि बस वही खाने के लिए लौट करके आ जाए। वही खाने के लिए लौट कर आ जाए, सोचे कि उस घर में उस आश्रम में तो बहुत अच्छा माल मिला था। अग्नि इस तरह से, तो इस तरह अग्नि में ये गुण है तेजस्वी। और यहाँ तेजस्वी का अर्थ अग्नि पक्ष में अर्चिष्मान, जैसे आग है तो आग में लपटे निकलती हैं, चिंगारियां निकलती हैं, लपट लपट को खा लौ को अर्ची कर, आग इस तरह तेज से झुकता है, इसको उसका ज्ञान कहेंगे। और तपसा दीप्ता, अग्नि तो तप से, यहाँ तप का अर्थ है ईंधन, लेकिन साधु के लिए ईंधन का त्याग ये अर्थ है। अग्नि में जितना ईंधन डालेंगे उतना ही दीप्त रहेगा, तो साधु जितना ही भोगों से दूर रहेगा, ईंधन कम डालेगा, उतना ही वो दीप्त रहता है, भोगों के त्याग से तेज बढ़ता है। तो इस तरह से वह साधु कहीं घूमे फिरे, और कभी कभी बाई चांस यदि उसे अश्रद्धा से अपमान से भी कुछ अन्न मिल जाता है खाने को, तो उस अन्न के दोषों से वो लिप्त नहीं होता। इसी तरह से केवल आहार की ही बात नहीं है, वह कहीं कुछ गया कुछ देख लिया तो वह उस दृश्य से कलुषित नहीं होगा। जैसे अग्नि देवता कुछ भी खा लेते हैं तो कलुषित नहीं होते, देखा सुना जा रहा है ऐसे। अच्छा, अग्नि रेव शिक्षांतरम, अग्नि से ही एक और शिक्षा ले रहे हैं। क्वचित छन्न क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छता भुंक्ते सर्वत्र दात्रीणाम दहन प्रागुत्तरा शुभम। अग्नि कभी छन्न रहता है, छन्न मतलब तिरोहित, काठों में ईंधनों में अग्नि छिपा रहता है, और कभी वही अग्नि प्रकट हो जाता है। वो अग्नि काठ में है, वहीं से प्रकट होता है, न कि दिया सलाई से प्रकट होता है। दिया सलाई जैसे दिया सलाई है, दिया सलाई में आग छिपा हुआ, अग्नि छिपा है ना, इसमें छन्न है, इसको हम प्रकट कर ही देते हैं। तो मैं दिया सलाई में जो आग, मैं कांच में आग है इसको कह रहा हूँ, इतनी ही आग है ना, लेकिन बहुत विशाल जो आग प्रकट होती है वो ईंधन से प्रकट होती है। हाँ, तो आग अपने आप यहाँ छिपा हुआ, पूरे विश्व को जलाने की शक्ति इसमें है, लेकिन छिपा, इस समय छिपा है, और कभी कभी अप्रकट होता है, कभी कभी अग्नि प्रकट होता है, और प्रकट होने पर फिर इसको दबा पाना कितना कठिन होता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ श्रेय इच्छता उपास्य, जो श्रेय चाहते हैं वे अग्नि की उपासना करते हैं, मतलब अग्नि सेवनीय है उनके द्वारा, जो श्रेय चाहते हैं। किस तरह का श्रेय? पहले तो श्रेय कुछ लोग चाहते हैं, जाड़ा मान लीजिए पड़ रहा है, चाहते हैं कि हमको ठंडा न लगे, श्रेय चाहते हैं, तो श्रेय चाहने वाले उपास्य अग्नि के पास सेवन करते हैं, आग तापते हैं, तो श्रेय चाहने वालों को अग्नि ताप देता है, इस तरह उनको ठीक करता है जाड़ा। भोजन पकाना चाहते हैं उनका भोजन पका रहा है, जो कूड़ा करकट जला देना चाहते हैं उनका कूड़ा करकट जला देता है, अथवा जो स्वर्ग चाहते हैं वे उनके द्वारा भी अग्नि उपास्य है, घी से हवन करके, एक दो किलो घी खर्च करके और करोड़ों टन घी लेना चाहते हैं स्वर्ग में, वे अग्नि देवता देते हैं, यहाँ थोड़ा हवन करके और स्वर्ग का सुख चाहते हैं, इसको श्रेय कहते हैं। तो श्रेय चाहते हैं, चाहे भगवान का धाम भी चाहते हैं, तभी अग्नि की उपासना करते हैं। गृहस्थ जीवन तो अग्नि के साक्षित्व में, साक्ष्य में चालू होता है, अग्नि के सामने पानी ग्रहण करते हैं, गृहस्थ का जीवन आग के सामने चालू होता है और आग में ही उन्हें अंत में जला दिया जाता है। श्रेय देते हैं, कल्याण करते हैं, स्वर्ग भी देते हैं अग्नि देवता और वैकुंठ भी देते हैं, इस जगत में भी हमारा भोजन पकाते हैं, इंजन चलते हैं, क्या क्या सब कुछ आग से होता है, शरीर भी चल रहा है आग से, चल रहा है ना, जिस दिन है आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो लोग शरीर को छूते हैं कि गर्म है कि ठंडा है, उनका एक गुड़वा पला कोई आग, अब आग विदा हो रहे हैं। तो इस तरह शरीर में आग है, बाहर आग है, अग्नि देवता हमारा श्रेय कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। तो अब साधु के लिए इसको लीजिए, साधु पक्ष में क्वचित छन्ना, कभी कभी साधु महात्मा छन्न रहते हैं, अपने अपनी महिमा को, अपनी भक्ति को छिपा करके रखते हैं, कोई ये ना जानने पावे कि ये कोई महात्मा है, छिपा लेते हैं। कब? कुसंग में, जहाँ कुसंग होता है, लोग भक्ति की महिमा को, भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते हैं, वहाँ वो अपने को बिल्कुल बेवकूफ जैसा दिखाता है कि कुछ नहीं जानता है। ऐसी बात करनी पड़ती है, जैसे मैं कुछ छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ मैं एक प्रवचन करता हूँ, भागवत पर बोल रहा हूँ, सैकड़ों आदमी सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी ट्रेन में ऐसा होता है कि खड़े खड़े जाना पड़ता है और कहते हैं थोड़ा उधर चले, तो भाई खड़ा रहो, जगह मांगते हैं, थोड़ा जगह दीजिए, इस पर बैठ सकते, नहीं नहीं कहाँ जगह, चलो। तो वहाँ थोड़े दिखाएंगे कि मैं भागवत जानता हूँ, साधु हूँ, प्रवचन करता, ठीक है भाई। तो इसको छन्ना कहते हैं, छन्न कुसंग है, बहिर्मुख लोग हैं तो साधु छन्न रहेगा, लेकिन क्वचित स्पष्ट, जहाँ मुमुक्षु मिल जाएंगे भगवान के भक्त जन मिलते हैं तो वहाँ पर अपने स्वभाव को वह आग प्रकट कर देती है। प्रकट अब वहाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कहीं कहीं वास्तव में साधु को ऐसे रखना चाहिए कि पता ही न लगे कि किस संस्था का है, किस आश्रम का है, कहाँ का है, इतना ही लगे कि एक आदमी है बस। नहीं खोलना चाहिए। मान लीजिए आप हीरा बेचने वाले हैं तो हीरा बांध कर ले गए हैं, तो जहाँ हीरा के महत्व को लोग नहीं जानते वहाँ मोटरी खोल कर करेंगे क्या? लाखों करोड़ों रुपए का हीरा है, किसी को कहेंगे कि आप लीजिए तो कहेगा हम 2 रुपया देंगे। तो वहाँ खोलना ही बेवकूफी है। जैसे जब भरत जी तब तक नहीं बोले, तब तक अपने को स्पष्ट नहीं किए जब तक राजा रघुगण नहीं मिले। अपने पिता के सामने, अपने भाइयों के सामने या जनता के सामने, वो काली भक्तों के सामने अपने को प्रकट नहीं किए, छंद नहीं। लेकिन जैसे ही एक उत्तम अधिकारी मिले महाराज रघुगण, उनके सामने बस प्रकट हो गए, बोले ज्ञान की बात। इसको स्पष्ट कहते हैं। तो अग्नि जैसे कभी कभी प्रकट हो जाते हैं, जलाने लगते हैं वन के वन, घर के घर, प्रकट मिलते हैं तो साधु अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं करता है। और जब मुमुक्षु मिलते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए उत्सुक, श्रवण के अभिलाषी, तो वहाँ पर वह भक्ति खोलता है क्वचित स्पष्ट, उपदेश आदि के द्वारा अपने को स्पष्ट कर देता है। और श्रेय की इच्छा वाले उसके पास बैठते हैं, जो चाहते हैं कि हम संसार सागर तर जाएं, भगवान को पा जाएं, तो उन्हें योगाभ्यास सिखाता है। योगाभ्यास मतलब ये माला पकड़ो, एक एक दाने पर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। इसको योगाभ्यास कहते हैं, योग का अभ्यास भगवान की भक्ति में लगाता है इस तरह से। अच्छा, ये साधु के पक्ष में हुआ। और अग्नि जैसे दूसरे की इच्छा से ही हवि ग्रहण करते हैं, उसी तरह से मुनि भी कभी कभी दूसरे की इच्छा से खा लेता है। क्या करे, लोग श्रद्धा से खिलाना चाहते हैं तो खा लेता है। आगे लिखा गया है, भूंगते सर्वत्र दात्रीणाम दहन प्रागुत्तराशुभम। दात्रीणाम दाताओं के प्राक और उत्तर अशुभ को, पहले के और बाद के पाप को दहन जला करके और सर्वत्र भूंगते, सर्वत्र खाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई अवधूत महात्मा, कोई परमहंस वैष्णव किसी के घर में खाता है तो जिसके घर में वो खाता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। दहन प्राक का अर्थ पूर्व जन्म का, और उत्तर का अर्थ है जो बाद में पाप होगा, पाप होने वाला है या कुछ है, तो उसको जला देता है। अब बीच वाला, बीच के लिए कह रहे हैं कि प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता, जो चालू हो गया है भोग, अब उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन साधु पहले के संचित पाप को और आगे भी पाप नहीं हो पाएगा, यह कर देता है। जो चालू बिल्कुल हो गया उसको प्रारब्ध कहते हैं। यहाँ पर एक टीकाकार कहते हैं कि यहाँ पर भूत भविष्य के पाप को तो नष्ट करने की बात की गई, लेकिन वर्तमान के प्रारब्ध को नहीं। तो प्रारब्धस्य भोगम अंतरा अपरिहार्यत्वं विद्यते। जैसे मान लीजिए इस समय कोई बीमार है, तो बीमार पाप के चलते है, तो साधु उसके घर में खाएगा तो ऐसा थोड़े होगा कि वो ठीक हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी, नहीं, आगे वो नरक में नहीं गिरेगा, आगे का सारा पाप खत्म है और पीछे का भी सारा खत्म हो चुका जो संचित। बीच में जो चालू हो गया है थोड़ा चलेगा। तो दाता के प्राक और उत्तर अशुभम पापम को दहन जलाता हुआ वह उनके द्वारा दिए हुए पदार्थों को भोगता है। उत्तर पाप मतलब पाप का परिणाम आदि, सब नरक आदि से बचा लेता। हाँ, वासना उत्तर पाप मन वासना सहित खत्म हो जाते हैं, तो वासना रहने पर बाद में पाप होने की संभावना रहती है। यहाँ भूंकते का अर्थ भोगना है, केवल भोजन सही तात्पर्य नहीं है। कोई कुछ दिया तो उसका ले लिया, विशेष करके खाने के अर्थ में है। दात्री नाम, कोई दाता है श्रद्धा से देना चाहता है, तो साधु का एक कर्तव्य है कि वह उससे ले और ले करके उसके सारे पापों को भस्म कर दे। कर देता है कोई, इसी आशय से नहीं लेता है कि मैं इसका पाप दूर कर दूं। लेकिन एक शुद्ध परमहंस की सेवा करने पर, एक वैष्णव की सेवा करने पर, सेवा करने वाले का पाप नष्ट होता है। भोगते सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है कि वह जाति का विचार नहीं करता है, या इस जाति का है, उस जाति का है, अपना है, पराया है, ये है, वो है, सर्वत्र वो सेवा स्वीकार कर लेता है। अग्नि से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे अग्निदेव है, अग्नि कहीं भी जाते हैं तो उनको कोई भी व्यक्ति अगर पुआल दे, खर दे, तो खाने लगेंगे, खाएंगे ना। अग्नि ये विचार नहीं करते हैं कि ये हीन जाति वाला हमको ईंधन दे रहा है, और ये विचार नहीं करेंगे कि ये ब्राह्मण नहा धोवा करके हम में लकड़ी डाल रहे हैं। तब प्रश्न होता है, क्या साधु को भी ऐसे ही खा लेना चाहिए जहाँ तहाँ? कोई कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, दे रहा है, इसमें इतनी ही बात विचारणीय है कि जाति पाति का विचार एक साधु को नहीं करना चाहिए। आजकल तो ब्रज में रहने वाले लोग भी ये कहते हैं, भंगी है तो ये है तो वो है, इतना पवित्र हो गए, कहा नरक में से गए ब्रज में, वहां भी जाकर जाति बुद्धि कर। खास करके आज के युग में तो जो गरीबों के अन्न है और खास करके छोटी जाति वालों के, वो अधिक पवित्र है। हम तो वृंदावन में देखते हैं, ब्रज में जो पंडा है, ब्राह्मण है, पुरोहित है, उनका अन्न इतना अशुद्ध है कि उसकी कोई सीमा नहीं। रात दिन झूठ बोलकर, लूट करके, ठग करके लाते हैं खाने के। तो वैसे अन्न से बचना चाहिए। खेती करने वालों का अन्न खा सकते हैं, व्यापार करने वाले और भी लोग हैं, या नौकरी करने वाले, मेहनत करने वाले, उनका जब अन्न खाया जाता है तब भजन होता है। लेकिन वृंदावन आदि धामों में साधु लोग खासकर ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाते हैं, ब्राह्मणों का अन्न जो है इधर तो पवित्र है, लेकिन वहाँ तो कैसा कैसा सेठ साहूकार सब ला करके देते हैं। खास करके किसी के मरने पर तो जरूर ला कर दे देते हैं। मरते समय वे छुआते हैं कुछ कंबल, उस मरने वाले आदमी से, सेठ से छुआते हैं कि छू दो 1000 कंबल, कुछ बोरा चावल, और इसको देंगे। और ऐसे ऐसे कंबल चावल पैसा को ले जाकर के बांटते। हमने पढ़ा है भागवत से कि कुछ ऐसी ही परंपरा है कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र धाम आप लोग सुने हैं ना, वहां पर कभी कभी लोग, जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके लाश में, मरे हुए शरीर में, एक बहुत बड़ा कलछुल बांधते हैं, बहुत बड़ा कलछुल, और पकाते हैं कुछ खीर या कुछ खिचड़ी जो भी हो, और उस मुर्दा के हाथ से उसको चलवाते हैं। ऐसे बाद दूसरे दो तीन आदमी लग करके उसको चलाते हैं, लेकिन उसके हाथ से बंधी रहती है कलछ दरी। और ऐसी कहावत है कि जब वह व्यक्ति परोसता है उन प्रेत ब्राह्मणों को, महापात्रों को, तब बहुत बड़ी दक्षिणा उनको मिलती है, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण खाते नहीं है, पहले से तय कर लेते हैं कि भाई हमको इतना दक्षिणा देंगे तब हम इसके हाथ से खाएंगे, मुर्दा के हाथ से। वो मुर्दा के संबंधी उसके हाथ को टांग कर, पलछुल सहित हाथ को टांग कर परोसवाते हैं। बहुत भारी दक्षिणा के लोभ में ब्राह्मण खा लेते हैं। और यह है कि जो व्यक्ति परोसता है इस तरह से वह स्वर्ग जाता है। अरे भैया वो तो स्वर्ग जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुर्दा के हाथ से कौन खाएगा? लेकिन भारी दक्षिणा के लोभ में ब्राह्मण खा लेते हैं। तो बताइए वही दक्षिणा किसी साधु को दिया जाए, उसी का अन्न खरीद करके या जैसे तैसे छुआ मुर्दा का छुआ हुआ अन्न किसी मधुकरी करने वाले को मिले, क्या वो खाने लायक है? इस तरह से खैर ऐसा तो नहीं होता और जगह कुरुक्षेत्र में वो भी पहले होता था क्या? अन्न खाने में बहुत सावधान रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल विधि निषेध से अतीत मुनि के लिए बात बताई जा रही है। घूमते सर्वत्र वो खाएगा तो उस पर क्या पाप लगेगा, और देने वालों के पाप को नष्ट कर देता है। यही और बात कही जाए उसमें इतना तेज होता है कि कुत्सित अन्न उसको अभिभूत नहीं कर सकता है। जैसे प्रचंड अग्नि जल रही है और उसमें आप कोई पानी एक दो बूंद फेंकी है तो पानी ही भाप बनकर उड़ जाएगा, अग्नि नहीं बुझ सकता है। तो इतना भगवत भक्ति से प्रदीप्त रहते हैं ये परमहंस लोग महामुनिन्द्र कि उनको अगर कभी कोई गलत अन्न भी मिला तो अन्न देने वाले का ही पाप दूर हो जाएगा, इनको पाप नहीं लगेगा। इस तरह से तेजस्वी होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बैठिए। सर्वत्र भूंगते इति तस्य परम हंसत्वम अभिव्यंजितम। सर्वत्र भूंगते ये केवल परमहंस ही ऐसा कर सकता है। सभी को सब जगह नहीं खाना चाहिए, भोजन के विषय में बहुत सतर्क रहना चाहिए, लेकिन परमहंस जो विधि निषेध से अतीत है ऊपर है वो खा सकता है। अभी भी अग्नि कहा स्वमायया सृष्टमिदं सर्वलक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपोऽग्निरिवैधसि। तो अग्नि ईंधनों में रहता है लेकिन जैसे मंथन से रगड़ से अग्नि उत्पन्न होता है, इसी तरह भगवान भी इस जगत में हैं लेकिन मंथन से प्रकट होते हैं। यहाँ दिया सलाह से थोड़ा मंथन किया जाता है ना? ये भक्ति योग है, थोड़ा ही मंथन से भगवान मिल जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अग्नि जथा एधसी प्रविष्ट ईयते, जैसे अग्नि ईंधन में है लेकिन उनको प्रकट करना पड़ता है, इसी कैसे मंथनात् तु प्रकटी भवती, मंथन से अग्नि प्रकट हो जाते। पहले भी असलाई नहीं थी तो लकड़ी को मथते थे, खास प्रकार की लकड़ी होती थी उसको मथा जाता था आग उत्पन्न हो जाते थे। आज भी बांसों की रगड़ से आग उत्पन्न हो जाती है। तो अग्नि जैसे मंथन से उत्पन्न होते हैं तथैव भगवान इदम जगत प्रविष्ट, भगवान इस जगत में है, अब उनको प्रकट करने का जब उपाय किया जाएगा तो प्रकट हो जाएंगे। कैसे प्रकट होते हैं? श्रवण कीर्तनादि भक्त्याभ्यास प्रत्यक्षी भवती प्रत्यक्षो भवती। जब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति की जाती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं अग्नि से। शिक्षण अग्नि इस एक उपाय से प्रकट होते हैं। आठवें स्कंध में कई उपाय बताए गए, जैसे खेत में अन्न है लेकिन खेती करने पर अन्न प्रकट हो गया, गाय में घी है लेकिन इसको खिला पिला कर दूध दूह कर जमा करके महने पर तब घी पैदा होता है गाय में घी। भूमि में अन्न है, नीचे जल है लेकिन चंपा कल लगाएंगे या कुछ रेहत सेहत करेंगे तब जाकर जल खींचेंगे। इसी तरह ईंधन में आग है लेकिन उसको प्रकट करने का उपाय करना पड़ता है। अतः इसी प्रकार भगवान भी अपनी माया के द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि किए हैं और सृष्टि करके इसके भीतर हैं, सब सब लक्षण मतलब अच्छा या बुरा, देवता या दानव, चेतन अचेतन जितना भी जगत भगवान ने सृष्टि किया है, तो सृष्टि करने के बाद इदम प्रविष्ट, इसके भीतर प्रविष्ट है भगवान। और प्रविष्ट होकर के एक टीकाकार कहते हैं कि वो विभू ही है, ऐसा नहीं कि जीव के समान उनका ज्ञान बल सब खत्म हो गया है, वो इस प्रवेश करके विभू है और ईयते वे प्रकट हो सकते हैं तत्त स्वरूप, उनका जो जो स्वरूप है, कोई उनको भगवान विष्णु के रूप में देखना चाहे या नरसिंहदेव के रूप में देखना चाहे, तो उन रूपों में भगवान है, ये तत्त स्वरूप ईयते ये अर्थ है, उन स्वरूपों में प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि एभसी ईंधन है, अग्नि जैसे काठ में प्रकट होता है, उसी तरह भगवान इस जगत में प्रकट हो सकता है, उनका वो ईंधन में अधिष्ठित है, इसलिए अधिष्ठान लकड़ी के कारण बहुष रूप में दिख रहा है। इसी प्रकार जीव अपनी अविद्या द्वारा जो शरीर ग्रहण किया है और इसमें प्रविष्ट है, लेकिन वह दिखाई देता है कि मनुष्य के रूप में है या हाथी के रूप में है, चींटी के रूप में है, अच्छा या बुरा शरीर ग्रहण किया इस रूप में है, लेकिन वास्तव में आत्मा इन शरीरों से भिन्न है। जैसे काष्ठों से अग्नि भिन्न वस्तु है, कांच नहीं है, आकार जो दिख रहा है वो कांच का है, अग्नि का वह आकार नहीं है। इस प्रकार आत्मा वास्तव में न तो बैल है, न आत्मा गाय है, न वृक्ष है, न आदमी है, न कीट पतंग है, या इन शरीर के आकारों से भिन्न है, ऐसा पता चलता है। पर भगवत परत इसका अर्थ यही है कि जैसे अग्नि ईंधन में प्रविष्ट है लेकिन मंथन करने पर वह प्रकट होता है, इसी प्रकार भगवान इस जगत की रचना करके इसके भीतर है लेकिन भक्ति से प्रकट होता है। सबको भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति में सबसे बढ़ करके है श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो अग्निदेव से शिक्षा हो गई, मैं यहीं तक लिखा था, तो ग्राम से कथा कहानी
रुक रहे ना, फिर 10:30 में चालू करेंगे,
लगभग 10:15 होने जा रहा है। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विसर्गाद्यः श्मशानान्तः भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेन व्यक्त वर्त्मना, कालेन योगवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ, नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथाचिषा, गुणे गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति, न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गायव गोपतिः, बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थैव तद्गतः, लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा चावस्थितोर्कवात्। विसर्गाद्यः निषेक से प्रारंभ करके गर्भाधान से प्रारंभ करके शमशानांता श्मशान तक मरण पर्यंत भावा स्थितियां देहस्य देह की होती है न आत्मना आत्मा की नहीं कलानाम कलाओं इवा जैसा चंद्रस्य चंद्र की चंद्रमा की कलाओं जैसा कालेना काल के द्वारा अव्यक्त वर्तमाना जिसकी गति व्यक्त नहीं है अलक्षित गति काल द्वारा आत्मनो जन्मादि षड विकारा भाव चंद्र दृष्टांतेन संभावित इत्याह विसर्गाध्याय की। अब चंद्रमा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं भगवान दत्तात्रेय। विसर्गाद्या श्मशानांता भावा देहस्य न आत्मना कला नामिव चंद्रस्य कालेन व्यक्त वर्तमना। चंद्रमा की कलाओं में ह्रास होता है और वृद्धि होती है ये देखा गया है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा में ह्रास या विकास नहीं होता है। चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है। कला किसे कहते हैं? यहाँ श्रीधर स्वामी जी एक लेख लिखे हैं, तत्रेयम ज्योतिष शास्त्र प्रक्रिया। ज्योतिष शास्त्र में यह बात लिखी गई है, मैं उसका अनुवाद नहीं समझ रहा हूँ पूरा पूरा, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई है कि चंद्रमा और चंद्रमा की कला में अंतर है। कला किसे कहते हैं इसे समझाए हैं, तत्रेयम ज्योतिष शास्त्र प्रक्रिया। आप्य मंडलम चंद्र तेजोमयम मंडलम आदित्य। चंद्रमंडल जो है, चंद्रलोक जो है, वह आप्य है। आप्य का अर्थ होता है जल प्रधान। चंद्रलोक जो चंद्रमंडल है उसमें बर्फ बहुत है और पानी से भरा हुआ प्रदेश है। वृक्ष लताएं सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अधिकांशतः वह आर्द्र है, बर्फ है, इसीलिए चंद्रमा की किरणें शीतल होती है। और आदित्य मंडल तेजोमय है, वह अग्निमय है। चंद्रमा की किरणें जो आती हैं कितनी तीखी होती है, सूर्य की किरणें तीखी होती हैं। तो सूर्य लोक जो है वह अग्निमय है, तेजमय है, और चंद्र मंडल जो है वह शीत प्रधान है। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं आप्य मंडलम चंद्र और तेजोमय मंडलम आदित्य, तयो एक नक्षत्रावस्था में चंद्रो न दृश्यते। जब वे एक नक्षत्र पर होते हैं दोनों, तो उस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो चक्षुषा आदित्य मंडलेन सम देश स्थितेन व्यधान सा अमावस्या। तो आदित्य मंडल और चंद्रमंडल जब एक नक्षत्र में रहते, एक देश में रहते हैं, तो उस समय आंखों में चंद्रमा को देखने का व्यधान हो जाता है, उसमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसी को अमावस्या कहते हैं। समझ नहीं आ रहा। अथ षष्ठी घटिका भी अर्थात इसके बाद छह घड़ियों में चंद्र नक्षत्रांतरम गच्छति। छह घटिका मतलब 45 मिनट का एक घड़ी होता है, लगभग चार घंटे में चंद्रमा दूसरे नक्षत्र में चले जाते हैं। और आदित्यस्तु त्रयोदश भी रहो रात्र, लेकिन आदित्य भगवान सूर्य जो है वो 13 दिन रात में दूसरे नक्षत्र में जाते हैं। अतः प्रतिपदम आरभ्य विषम स्थित आदित्य मंडल से पंचदशो भाग आप्य मंडले प्रतिबिंबित दृश्यते। अतः प्रतिपदा से प्रारंभ करके प्रतिपदा प्रारंभ होता है तो सूर्य का 15वां भाग चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होता है। चंद्रमा वास्तव में पूरा रहता है लेकिन सूर्य का 15वां भाग उस पर प्रतिबिंबित होता है। दृश्यते सा कला इति उच्यते, उसको कला कहते हैं। एवं पंचदशे अहनि, इस प्रकार से 15 दिन के बाद 15वें दिन त्रयोदशवीं नक्षत्र अंतरम इति राशि चक्र से सप्तविंशति नक्षत्रात्मक से मध्य सम्मुखो चंद्राद्वितो तिष्ठतः तथा संपूर्णम प्रतिबिंबम दृश्यते सा पौर्णिमा। कुछ ऐसा होते होते 15 दिन के बाद सूर्य का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं। तो जो सूर्य का 15वां भाग चंद्रमा पर पड़ता है उसी को कला कहते हैं। और एक एक दिन वो बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से वास्तव में चंद्रमा में ह्रास और वृद्धि नहीं है। चंद्रमंडल जो है वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें अपना प्रकाश नहीं है क्योंकि आप्य मंडल है वह। और सूर्य मंडल में अपना प्रकाश है क्योंकि तेजोमय मंडल है। तो चंद्रमा में घटती बढ़ती नहीं होती है, घटती बढ़ती उसकी कलाओं में होती है। इसी तरह से अव्यक्त गति काल द्वारा चंद्रमा से केवल एक ही श्लोक में शिक्षा है लेकिन बहुत बढ़िया शिक्षा है। विसर्गाद्या शरीर की अवस्था पर आप विचार करें, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। अवस्था मतलब जिन स्थितियों में अस्थित रहता है शरीर। पहले है विसर्ग। तो विसर्ग का अर्थ है बिल्कुल सर्ग, मतलब बिल्कुल प्रारंभ है। सर्ग सृष्टि का प्रारंभ, शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है। स्त्री पुरुष के मिलन से धातु क्षरण होता है और उसी दिन शरीर बनना चालू होता है। 10 दिन तक वह कललम रहता है। इसके बाद 1 महीने के बाद उसमें कुछ सिर अंग आदि निकलते हैं, दूसरे अंग गर्भ में। शरीर इस तरह से इस अवस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद प्रसव होता है। प्रसव के बाद भी शरीर बहुत छोटा रहता है, केश नहीं रहता है, दांत नहीं रहते। धीरे धीरे शरीर की अवस्था बदलती है। तो वह कुमार अवस्था में आता है। शिशु से कुमार, कुमार से पौगंड, पौगंड से किशोर, किशोर से जौवन, युवक और युवक से फिर वार्धक्य, बुढ़ापा और अंत में समाप्त हो जाता है। चाहे राख हो जाए, चाहे कीड़ा हो जाए, जमीन बन जाए, कुछ भी सड़गल का खत्म। तो निषेक से गर्भाधान से शरीर की अवस्था चालू होती है और श्मशान अंत, श्मशान में उसका अंतिम प्रयोगशान होता है। श्मशान में कैसी अवस्था होती है शरीर की, ये तो न पूछने की बात है न किसी को बोलने की जरूरत है, सब देख ही रहे हैं। श्मशान में यही शरीर कैसा हो जाता है, आग से जलता हुआ दिखाई देता है अथवा जमीन में चला जाता है, या कुत्ते सियार आदि खा जाते हैं इसको। ये शरीर की दशा है, तो बदलती रहती है शरीर की दशा। यदि बच्चा, जवान, वृद्ध विविध प्रकार के रोग से ग्रस्त हुए, क्रोधी अवस्था, कामी अवस्था, क्या क्या शरीर इन विभिन्न गतियों से गुजर रहा है। लेकिन इस शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा जो है एक ही स्थिति में है, उसमें बदलाव नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीर, जैसे चंद्रमा का जो मंडल है वो ज्यो का त्यो रहता है, उस पर सूर्य की किरण प्रतिफलित होती है, जाती है, वही थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, घटती है, इसे कला कहते हैं। तो चंद्रस्य कलाना, चंद्र की कलाओं में ही विविध अवस्थाएं होती हैं, ये प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, बाद में अमावस्या, नहीं पूर्णिमा, और फिर घटना, फिर अमावस्या होती है। तो बारंबार चंद्रमा की कलाओं में ह्रास या विकास होता है, वास्तव में चंद्र लोक में नहीं, चंद्रमंडल में नहीं। इसी तरह आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन केवल शरीर में होता है। और शरीर में परिवर्तन क्यों होता है? काले न अव्यक्त रंगसा, काल परिवर्तन करता है। आत्मा काल से अतीत है, लेकिन शरीर काल के अधीन है। तो कुछ काल तक यह बच्चा रहता है, कुछ काल युवक रहता है, वृद्ध रहता है, और फिर दुरत्य काल के द्वारा भस्म बना दिया जाता है, या किसी पशु का सियार गिद्ध आदि का मल बना दिया जाता है, चाहे जमीन के अंदर या कृमि बना दिया। सैव काल न दुरत्त ये न कले रंग कृमि भस्म संगीत। शरीर तो ऐसे हम लोग देखें, दो ही चीज तो विचारणीय है, तीन चीज, शरीर, आत्मा और भगवान, तीन ही विषय समझने के लिए है वास्तव। तो अपने से अपना चेहरा देख सकते हैं, नक में अपनी स्थिति पर विचार कर सकते हैं, कितना शरीर बदल रहा है, जी क्या क्या अवस्था हो रही है। लेकिन शरीर का जो पोजेशन आत्मा है, वह ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो बूढ़ा नहीं होता, वो नहीं मरता है, वह रोगी नहीं होता है। तो इस तरह चंद्रमा के बढ़ते और घटते हुए कलाओं को देख करके और चंद्रमंडल की स्थिति को एक रस देख करके हमें अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये चंद्रमा से यह ज्ञान संभावित होता है, प्राप्त होता है। फिर अग्नि से शिक्षा दे रहे हैं। इसको सिद्धर स्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि सिंहावलोक में अग्नि दृष्टान्ते न एव देहानां क्षण भंगुरतया वैराग्यम शिक्षितम इत्याह काले नैति। क्योंकि देह की जो अवस्थाएं हैं उनका निरूपण चंद्रमा की कलाओं के साथ किया गया, तो एक अग्नि का भी, अग्नि की जो चिंगारियां हैं, लपटे हैं, लपटे भी नित्य निकलती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं, लेकिन नित्य दिखती हैं। वो ये नहीं समझ में आता है कि ये मिट रही हैं या बन रही हैं। तो चंद्रमा की कलाओं से और अग्नि की लपटों से कुछ मेल है, इसीलिए याद आ गई भगवान दत्तात्रेय जी को। तो पुनः अग्नि के दृष्टांत से वैराग्य के लिए, इन वैराग्य शिक्षितम आह, वैराग्य सीखे, देह क्षण भंगुर है यह कहकर। सिंह अवलोक का अर्थ होता है कि सिंह जब चलता है तो उसका स्वभाव होता है कि वह सीधे चलता नहीं जाता है, वो चलता है धीरे धीरे और कहीं रुक करके फिर पीछे देखता है, ऐसे इधर देखता है, इसको सिंहावलोक कहते हैं। तो जिसका वर्णन में कर चुके हैं भगवान दत्तात्रेय।